नमस्ते, मैं आरव हूँ। नाइन आर ट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा, शिफ्ट हाउ टॉप रियल एस्टेट एजेंट्स टैकल टफ टाइम्स। गैरी केलर, डेव जेंक्स और जे पेपासन की व्यावहारिक व्यावसायिक पुस्तक है। यह रियल एस्टेट एजेंटों के लिए लिखी गई है, विशेषकर उन स्थितियों के लिए जब बाजार तेजी से बदलता है, बिक्री घटती है, खरीदार निर्णय टालते हैं और प्रतिस्पर्धा अधिक कठिन हो जाती है। मूलतः मंदी के दौर में प्रकाशित यह पुस्तक इस विचार पर केंद्रित है कि बाजार की गिरावट केवल संकट नहीं, काम करने की पुरानी पद्धतियों की परीक्षा भी है। लेखक किसी एक जादुई बिक्री युक्ति का दावा नहीं करते। इसके बजाय वे 12 रणनीतियों के माध्यम से एजेंट को अपनी सोच, खर्च, लीड निर्माण, ग्राहक संवाद, मूल्य निर्धारण और सौदे पूरे करने की प्रक्रिया बदलने का ढांचा देते हैं। पुस्तक का उद्देश्य एजेंट को बाजार नियंत्रित करने का भ्रम देना नहीं, बल्कि उन गतिविधियों पर नियंत्रण लौटाना है जिनसे अवसर, नकदी प्रवाह और बाजार हिस्सेदारी बनती है। इसीलिए शिफ्ट को केवल डाउन मार्केट की सर्वाइवल गाइड नहीं, बदलती परिस्थितियों में अनुशासित रियल एस्टेट संचालन की पुस्तक भी माना जा सकता है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, बाजार की दिशा बदलते ही योजना बदलने का सिद्धांत। पुस्तक का केंद्रीय विचार यह है कि रियल एस्टेट बाजार चक्रीय है, इसलिए एजेंट की रणनीति स्थिर नहीं रह सकती। तेजी के बाजार में मांग अधिक होने पर प्रतिक्रियाशील ढंग से काम करने वाला एजेंट भी पर्याप्त व्यवसाय पा सकता है। इसके विपरीत धीमे या खरीदार केंद्रित बाजार में वही आदत जोखिम बन जाती है। ग्राहकों के पास अधिक विकल्प होते हैं। विक्रेताओं को मूल्य और प्रस्तुति के प्रति अधिक यथार्थवादी होना पड़ता है तथा सौदों को पूरा होने में अधिक बाधाएं आती हैं। केलर और सहलेखक इस बदलाव को सोच और कार्यनीति दोनों का बदलाव मानते हैं। इसका अर्थ केवल अधिक मेहनत करना नहीं है। एजेंट को अपने स्थानीय बाजार के संकेतों, सक्रिय इन्वेंटरी, प्रतिस्पर्धी लिस्टिंग, खरीदारों की आपत्तियों और लेन देन की गति को ध्यान से देखना होता है। फिर उसे अपनी दैनिक प्राथमिकताएं इन तथ्यों के अनुसार तय करनी होती हैं। पुस्तक का तर्क है कि बाजार को दोष देने के बजाय एजेंट को अपने नियंत्रण वाले तत्वों पर लौटना चाहिए, जैसे संपर्कों की संख्या, फॉलो अप की गुणवत्ता, मूल्य संबंधी सलाह और खर्च की जवाबदेही। यह दृष्टि संकट को भावनात्मक प्रतिक्रिया के बजाय संचालन संबंधी समस्या में बदलती है। हालांकि स्थानीय नियमों, ब्याज दरों और आवासीय आपूर्ति के अंतर के कारण हर बाजार में एक ही कदम समान परिणाम नहीं देगा, इसलिए पुस्तक की रणनीतियों को स्थानीय आंकड़ों और पेशेवर अनुपालन के साथ लागू करना आवश्यक है। दूसरा, लीड जनरेशन को दैनिक अनुशासन और मापन योग्य प्रक्रिया बनाना। शिफ्ट में नए संभावित ग्राहकों तक लगातार पहुंच बनाना व्यवसाय की प्राथमिक गतिविधि के रूप में उभरता है। कठिन बाजार में केवल रेफरल, पुराने संपर्कों या आने वाली पूछताछ पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं रहता। जब कुल लेन देन कम होते हैं, तब एजेंट को सक्रिय रूप से अधिक बातचीत शुरू करनी पड़ती है, पुराने संबंधों को फिर से जोड़ना पड़ता है और अपने प्रभाव क्षेत्र के संपर्कों के साथ नियमित रहना पड़ता है। पुस्तक का उपयोगी पक्ष यह है कि वह लीड जनरेशन को अस्पष्ट प्रचार नहीं, बल्कि मापी जा सकने वाली पाइपलाइन मानती है। एजेंट को यह जानना चाहिए कि कितने संपर्कों से कितनी मुलाकातें, कितनी संभावित लिस्टिंग या खरीदार परामर्श बैठकें और अंततः कितने बंद सौदे बन रहे हैं। इस क्रम से कमजोर कड़ी पहचानी जा सकती है। उदाहरण के लिए, यदि बातचीत तो बहुत हो रही है लेकिन परामर्श बैठकें नहीं बन रही, तो समस्या संदेश, लक्ष्य ग्राहक या फॉलो अप में हो सकती है। यदि बैठकें हैं लेकिन सौदे नहीं, तो मूल्य निर्धारण, वित्तीय तैयारी या सेवा प्रस्तुति पर काम चाहिए। पुस्तक मात्रा और निरंतरता को महत्व देती है, पर इसका अर्थ बिना अनुमति के आक्रामक संपर्क नहीं है। आज के संदर्भ में इस विचार को ग्राहक की सहमति, गोपनीयता नियमों और उपयोगी प्रासंगिक संवाद के साथ जोड़ना चाहिए। अनुशासित ट्रैकिंग एजेंट को अनुमान के बजाय वास्तविक गतिविधि और रूपांतरण के आधार पर निर्णय लेने में मदद करती है। तीसरा, खर्च घटाना नहीं, मार्जिन और निवेश प्रतिफल की रक्षा करना। मंदी में खर्च कम करने की सलाह सामान्य है, लेकिन शिफ्ट इसे अधिक व्यावहारिक ढंग से मार्जिन प्रबंधन से जोड़ती है। धीमी बिक्री का सीधा प्रभाव आय और नकदी प्रवाह पर पड़ता है। यदि एजेंट ने तेज बाजार के दौरान कार्यालय, सहायक सेवाओं, प्रचार या अन्य स्थिर लागतों को बिना समीक्षा के बढ़ा दिया है, तो कम कमीशन के दौर में वही ढांचा दबाव पैदा करता है। पुस्तक का आशय हर खर्च को समाप्त करना नहीं, बल्कि प्रत्येक खर्च को उसके परिणाम के विरुद्ध परखना है। कौन सा व्यय लीड, नियुक्ति, ग्राहक सेवा या सौदे तक पहुंचा रहा है और कौन सा केवल आदत या प्रतिष्ठा के लिए बना हुआ है, यह अंतर स्पष्ट होना चाहिए। इस दृष्टि से एजेंट को व्यक्तिगत खर्च और व्यावसायिक खर्च दोनों पर निगरानी रखनी पड़ती है, क्योंकि दोनों नकदी की उपलब्धता को प्रभावित करते हैं। बचाया गया धन कठिन समय में व्यवसाय चलाने के लिए समय देता है, जिससे एजेंट घबराकर कम गुणवत्ता वाले निर्णय लेने से बच सकता है।
फिर भी पुस्तक का ढांचा अंधाधुंध कटौती का समर्थन नहीं करता। यदि किसी प्रचार माध्यम या ग्राहक सेवा निवेश का परिणाम मापा जा सकता है और वह लाभदायक है,
तो प्रतिस्पर्धियों के पीछे हटने पर उसे बनाए रखना या चुनिंदा रूप से बढ़ाना तर्कसंगत हो सकता है। मुख्य सिद्धांत यह है कि हर रुपया उद्देश्यपूर्ण, ट्रैक करने योग्य और लाभप्रद गतिविधि से जुड़ा हो। इस तरह वित्तीय अनुशासन केवल लागत नियंत्रण नहीं, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता का आधार बनता है। चौथा, विक्रेताओं के साथ मूल्य निर्धारण और खरीदारों के साथ तात्कालिकता का संवाद। कठिन बाजार में सौदे अक्सर इसलिए नहीं रुकते कि एजेंट के पास ग्राहक नहीं है, बल्कि इसलिए कि विक्रेता बाजार मूल्य स्वीकार नहीं करता या खरीदार निर्णय को लगातार टालता है। शिफ्ट दोनों स्थितियों को संवाद और सलाह की समस्या के रूप में देखती है। विक्रेता के लिए एजेंट की जिम्मेदारी केवल संपत्ति सूचीबद्ध करना नहीं, बल्कि उपलब्ध प्रतिस्पर्धी लिस्टिंग, हाल की बिक्री, मांग की स्थिति और बाजार में बिताए समय जैसे संकेतों के आधार पर यथार्थवादी मूल्य चर्चा करना है। गलत शुरुआती मूल्य संपत्ति को लंबे समय तक बाजार में रख सकता है, जिससे खरीदारों की रुचि और सौदे की संभावना कम हो सकती है। खरीदार के लिए पुस्तक तात्कालिकता पैदा करने की बात करती है, जिसका उचित अर्थ कृत्रिम दबाव बनाना नहीं है। इसका अर्थ है खरीदार को उसकी वित्तीय तैयारी, उपलब्ध विकल्पों, मूल्य सीमा और बाजार की वास्तविक स्थितियों को समझाकर निर्णय प्रक्रिया स्पष्ट करना। एजेंट को खरीदार की हिचक के पीछे की वजह पहचाननी चाहिए, जैसे वित्त पोषण, मूल्य, स्थान या जोखिम की चिंता। इसी संदर्भ में पुस्तक रचनात्मक वित्त पोषण विकल्पों की समझ का भी महत्व बताती है। एजेंट को ऋणदाता की जगह वित्तीय सलाह नहीं देनी चाहिए, लेकिन वह ग्राहकों को सही प्रश्न पूछने, योग्य वित्त विशेषज्ञों तक पहुंचने और व्यवहार्य विकल्प समझने में सहायता कर सकता है। यह विषय बताता है कि बाजार बदलने पर एजेंट की भूमिका सूचना देने वाले व्यक्ति से बढ़कर स्पष्ट निर्णय में मदद करने वाले सलाहकार की हो जाती है। अंत में, बाजार के वर्तमान अवसरों, फोरक्लोजर और आरईओ की विशेषज्ञता विकसित करना। पुस्तक की 12 रणनीतियों में बाजार के वर्तमान अवसरों पर महारत हासिल करने का विचार विशेष महत्व रखता है। मंदी या आवासीय गिरावट के दौरान सामान्य पुनर्बिक्री लेन देन के साथ शॉर्ट सेल, फोरक्लोजर और आरईओ जैसी श्रेणियां अधिक दिखाई दे सकती हैं। शिफ्ट एजेंट को यह पहचानने के लिए प्रेरित करती है कि बदलती परिस्थितियों में कौन से लेन देन बढ़ रहे हैं और उन्हें संभालने के लिए कौन सा ज्ञान, नेटवर्क तथा प्रक्रिया चाहिए। यह केवल नए शब्द सीख लेने का मामला नहीं है, इन लेन देनों में दस्तावेजी आवश्यकताएं, समय सीमा, ऋणदाताओं की प्रक्रियाएं, संपत्ति की स्थिति और ग्राहक अपेक्षाएं सामान्य बिक्री से अलग हो सकती हैं। इसलिए विशेषज्ञता का अर्थ जोखिमों और सीमाओं को ईमानदारी से समझना भी है। पुस्तक का व्यापक सिद्धांत यह है कि एजेंट को उस बाजार का विशेषज्ञ बनना चाहिए जो वास्तव में मौजूद है, न कि उस बाजार का जिसमें वह काम करना पसंद करता था। इस दृष्टि से स्थानीय आंकड़ों, संपत्ति प्रकारों, वित्त पोषण की उपलब्धता और खरीदार व्यवहार का अध्ययन आवश्यक है। आज लागू करते समय विशेष सावधानी चाहिए, क्योंकि फोरक्लोजर, शॉर्ट सेल और आरईओ से जुड़े नियम, प्रक्रियाएं और बाजार भागीदारी समय तथा स्थान के अनुसार बदलते हैं। एजेंट को अपने लाइसेंस संबंधी नियमों, कानूनी सीमाओं और विशेषज्ञ सहयोगियों के दायरे में काम करना चाहिए। फिर भी पुस्तक का मूल संदेश टिकाऊ है। अवसर पहचानने वाला एजेंट मांग घटने पर भी उपयोगी विशेषज्ञता के माध्यम से अपना स्थान बना सकता है। निष्कर्ष में, शिफ्ट उन रियल एस्टेट एजेंटों, टीम लीडरों और नए पेशेवरों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो यह समझना चाहते हैं कि बाजार कमजोर पड़ने पर व्यवसाय को केवल बचाया नहीं, व्यवस्थित रूप से पुनर्गठित कैसे किया जाए। इसे पढ़ने से सबसे व्यावहारिक लाभ दैनिक गतिविधियों और परिणामों का संबंध समझने में मिलता है। पाठक लीड जनरेशन, फॉलो अप, खर्च, मूल्य निर्धारण और बाजार विशेष अवसरों को अलग अलग काम नहीं, एक ही संचालन प्रणाली के हिस्सों की तरह देखना सीख सकता है। पुस्तक का बौद्धिक लाभ भी महत्वपूर्ण है। यह तेजी के बाजार में बनी सुविधाजनक धारणाओं को चुनौती देती है और बताती है कि बाजार हिस्सेदारी अक्सर उस समय बदलती है जब अधिकांश लोग अपनी गतिविधि घटा देते हैं। समान श्रेणी की कई रियल एस्टेट पुस्तकें सामान्य प्रेरणा, व्यक्तिगत ब्रांड या बिक्री कौशल पर केंद्रित रहती हैं। शिफ्ट की अलग पहचान इसकी संकट केंद्रित संरचना और 12 रणनीतियों वाले स्पष्ट ढांचे में है। यह एजेंट को बाजार चक्र, वित्तीय अनुशासन और लेन देन की बदलती प्रकृति को एक साथ देखने के लिए कहती है। फिर भी
इसे किसी भी स्थानीय बाजार के लिए तैयार नुस्खा नहीं समझना चाहिए। पुस्तक की सलाह को स्थानीय आवासीय आंकड़ों, वर्तमान वित्त पोषण स्थितियों, कानूनी नियमों और ग्राहक हित के साथ जांचकर अपनाना जरूरी है। जिन पाठकों को मंदी, बढ़ती इन्वेंटरी या धीमी मांग के बीच प्राथमिकताएं तय करनी है, उनके लिए यह पुस्तक एक उपयोगी कार्य पुस्तिका जैसी दिशा दे सकती है। अच्छे बाजार में भी इसके मापन, संपर्क और मार्जिन संबंधी सिद्धांत व्यवसाय को अधिक स्थिर बनाने में सहायक है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं गैरी केलर, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।